ओम शांति। आजकल लोग वाइब्रेशंस, एनर्जी के बारे में बहुत बात करते हैं, तो आज हम ऑरा के बारे में बात करेंगे। ऑरा क्लेंजिंग, आभा मंडल का शुद्धिकरण। जैसे हम देखते हैं ना, देवताओं के पीछे एक हेलो होता है वाइट कलर का, उसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल। जैसे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का यहाँ फोटो है, इसके आजू बाजू जो हमको येलो दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, इसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल। तो सबसे पहले ऑरा क्या है, आभा मंडल क्या है? तो जो हम विचार करते हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसी हमारी स्थिति होती है, उसके प्रकंपन जो फैलते हैं, उसका ऑरा बनता है, तो इसी को ऑरा कहते हैं। तो दुनिया में इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हुई है। क्यों हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब शरीर में बीमारी आने वाली होती है, तो सबसे पहले इस आभा मंडल में आती है। जिस भी ऑर्गन में बीमारी आने वाली होती है, उस रीजन का जो ऑरा होता है वो बहुत डार्क हो जाता है, और फिर कुछ सालों बाद इंसान को वो बीमारी आती है। तो ऐसी कैलरीन फोटोग्राफी होती है, जिससे ये फोटोग्राफ्स लिए गए और उससे लोगों के ऑरा पड़े गए, और ऑरा में अलग अलग प्रकार के कलर्स दिखाए गए। किसी का लाइट कलर, वाइट कलर, किसी का डार्क कलर, ऐसे अलग अलग कलर्स। ऐसे ही कुछ साल पहले दिल्ली के हॉस्पिटल में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, PIP फोटोग्राफी। उस पर इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत लोगों के फोटोग्राफ्स लिए ऑरा के, और उन्होंने स्टडी की उस पर, और देखा कि कैसे मेडिटेशन, योग का असर पड़ता है इस पर। तो जैसे एक आदमी का चित्र निकाला था ऑरा का, उसके गले पे बहुत लाल लाल दिखाया था, और फिर उसके बाद उसको योग करने के लिए कहा। 20 मिनट के बाद जब उसने योग किया, तो वो जो लाल था वो चला गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे योग में इतनी पावर है कि जो आने वाली बीमारी है हमारे शरीर में, उसको भी वो मिटा सकती है। इसी तरह उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, और दो ग्रुप्स में एक को म्यूजिक सुनाया और एक को मेडिटेशन करवाया। तो उन्होंने देखा कि म्यूजिक सुनाकर ऑरा के कलर्स में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जिन्होंने योग किया उनके ऑरा जो थे वो चेंज होते गए। तो इसी तरह से बहुत सारी स्टडीज की गई कि कैसे योग का असर ऑरा पर होता है। तो एक्चुअली ये जो आभा मंडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास है, ये एक्चुअली हमारे थॉट्स है जिससे ये ऑरा बनता है। तो काम एक्चुअली यहाँ करना है, ऑरा पर नहीं। तो बाहर की दुनिया वाले इसके बारे में क्या कहते हैं? कई लोग बहुत इस पे ऑरा क्लेंजिंग के लिए जाते हैं लोगों के पास। जैसे आपने सुना होगा ना, रेकी। रेकी भी क्या होती है, एक एनर्जी देते हैं, एक हीलिंग एनर्जी देते हैं, ताकि जो भी वो पार्ट है, जो ऑर्गन है, उससे बीमारी दूर हो जाए। यहाँ बैठा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहाँ से भी वो एनर्जी दे सकता है। तो उसी तरह से ऑरा के भी अलग अलग प्रकार से शुद्धिकरण होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया स्नान करना। वो कहते हैं कि पानी शरीर पर डालेंगे तो ऑरा क्लीन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है, कभी हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं, बहुत सोचते हैं, और फिर एक जाके स्नान कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है ना, लगता है ठीक। तो स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी था वो सब चला गया। तो उन लोगों की मान्यता है कि हमारा जो ऑरा है वो पानी के स्नान से क्लीन हो जाता है। तो जैसे कि सारा कुछ धुल गया, इसीलिए तो कहते हैं ना, गंगा स्नान करो तो जैसे कि पाप धुल गए, तो वो गंगा स्नान करने के लिए कहते हैं। तो अगर ऐसा होता तो हम सब पानी के टब में ही बैठे रहते पूरा दिन, और हमारे आभा मंडल को शुद्ध करते रहते, है ना। तो वो ये मानते हैं कि पानी से इसका शुद्धिकरण होता है। इसी तरह से दूसरी मान्यता है वायु से शुद्धिकरण। जैसे कभी देखो बहुत नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं मन में, एक कमरे में हम बैठे हैं, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, बार बार वही विचार मन में आते रहते हैं। तो कहते हैं ना कि मन को डाइवर्ट करो और खुली हवा में जाओ, है ना। तो जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं जब शुद्ध हवा हम लेते हैं तो हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से वो वायु के शुद्धिकरण के बारे में कहते हैं, कपालभाति, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस से, क्योंकि इससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते बॉडी में, तो वो कहते हैं इनसे हमारा आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से वो कहते हैं अग्नि, अग्नि से हमारा जो आभा मंडल ऑरा है वो शुद्ध होता है, तो वो कहते हैं अग्नि, अग्नि के सामने अपने कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, तो कैसे शुद्ध आपका ऑरा शुद्ध होता है। हमने देखा होगा ना कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी आरती होती है, कुछ धुआं होता है, उसको जगह जगह पे लेके जाते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। स्टीमिंग नहीं। तो जैसे आरती करते है ना, आरती करते तो वो प्लेट को कैसे गोल गोल घुमाते, हम सोच रहे थे कि वो प्लेट ऐसे भी लेके खड़े रह सकते, पर हम उसको गोल गोल क्यों घुमाते, गोल गोल घुमाते हैं। शायद वो लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये ऑरा के क्लीनिंग है ना। ऐसे ही इस्लाम धर्म में जब घर में फातिया होती है तो लोबान जलाया जाता है, जैसे लोबान समझते हैं ना, उससे खुशबू भी आती है और धुआं भी आता है, तो जब वो फातिया पूरी होती है सबके आगे लाया जाता है और सब उसको अपने पे लेते जैसे कि अपने ऑरा को क्लीन कर रहे। ऐसे ही जब आरती भी होती है तो अग्नि को लेते हैं ना हम अपने पर, तो जैसे कि हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है, घर के हर कोने कोने में उसको जाके फैलाते हैं। दरगाह पे भी आप जाएंगे तो ये लोबान जलता रहता है, जैसे कि वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। हम जब छोटे थे तो घर पे फकीर आता था तो हमारे आंग पे डालता था वैसे धुआं, सोचता था जैसे बस हमसे सब धूल निकल रही है, और फिर हम उसके इसमें पैसे डालते थे। तो ये भी एक तरीका था शुद्धिकरण का, ऑरा शुद्धिकरण। इसी तरह से अगर हम सोचे तो हमारे जो दादी नानी हैं वो लोग क्या करते थे, कहते थे आपको नजर लग गई, अगर कुछ हमारा मूड ठीक नहीं है या हमारे कोई बीमारी हो गई है ना, बहुत चिड़चिड़े हैं या कोई बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, तो घर में क्या कहते हैं कि इसकी नजर उतार दो। तो वो नजर कैसे उतारते, नमक लेते या तो मिर्ची लेते या तो अंडा भी लेते और उसको एक तरीके से गोल गोल घुमाते। किसी को ये तरीका आता है किसी को नहीं, और उसमें बहुत पर्टिकुलर होते हैं कैसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेते हैं। तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे आभा मंडल की शुद्धिकरण कर रहे होते हैं, उनकी ये मान्यता होती है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार है, जैसे शादी होती है जो दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं, हमने देखा होगा ना, हल्दी वल्दी लगाते उसको सब कुछ, और कुछ कॉइन्स लेते पैसे लेते और उसके आजू बाजू गोल 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 घुमा के फिर डालते हैं थाली में। वो क्या कर रहे होते एक्चुअली, वो नजर उतार रहे होते, वो सोचते हैं कि ये करने से उनका ऑरा ठीक हो जाएगा, उनका ऑरा क्लीन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग चक्रस पे बात करते हैं, बाबा ने कहीं पर भी मुरली में हमको चक्रस के बारे में नहीं बताया, ऐसे 7 चक्र है उसका शुद्धिकरण करते हैं। कई लोग ऑरा क्लीनिंग में बिठाते हैं और अलग अलग पॉजिटिव विचार देते हैं, ऑटो सजेशन, अपने आप को ही अलग अलग पॉजिटिव विचार देना। जैसे जैसे पॉजिटिव विचार देंगे वैसे वैसे हमारा ये आभा मंडल शुद्ध होता जाता है, तो इस तरह से इनकी मान्यता है। अब हम देखेंगे हमको बाबा ने कितनी बार बोला है कि आप योगा के एक्सपेरिमेंट्स करो, और हम करते हैं ना बहुत सारे, जैसे सूरज भाई जी अभ्यास देते हैं कि आप स्वमान का अभ्यास करो, 108 बार करो, 21 बार करो, 1000 बार करो, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे। उन्होंने इतना भी कहा कि किसी किसी को इसका पता भी नहीं होता, और मैं उनसे कहता हूँ कि बस कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और वो बोलते 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 उनकी स्थिति चेंज हो जाती है। जैसी स्थिति चेंज होती है ये आभा मंडल चेंज हो जाता है, क्योंकि वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो स्वमान में कितनी शक्ति है ना, तो वो स्वमान का अभ्यास देते कि बार बार इतनी बार करो, इसको इतनी बार बोलो बोलो, उसको महसूस करो, उसका अभ्यास करो। तो इस तरह से स्वमान की प्रैक्टिस कराते वो। कई बार उन्होंने कहा है कि हाथों में बहुत शक्ति होती है जैसे कि, तो जिस स्वमान का हम अभ्यास करेंगे हाथों को लेके मल के, उन्होंने कई बार कहा है कि जैसे घुटनों में दर्द है तो घुटनों को ऐसे सहलाओ, तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? ऐसे सहलाने से तो ठीक नहीं होता है ना, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। कहते हैं जब नेगेटिव एनर्जी या कोई ब्लॉक हो जाती है एनर्जी, तब उस ऑर्गन में दर्द होता है, तब उस ऑर्गन में कोई ना कोई बीमारी होती है। तो वो उस एक्सपेरिमेंट से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने कई बार देखा है अमृत वेला के बाद बहुत लोग ऐसे ऐसे हाथ रब करते, ऐसे ऐसे हाथ रब करते और अपनी आंखों पर लगाते, क्योंकि तो कोई शक्ति जनरेट हो जाती है हमारे पूरे बॉडी के आजू बाजू, वही हमारा आभा मंडल है ना। तो इस आभा मंडल को अब ये लोग ऐसे क्लीन करते, लेकिन शायद होता भी होगा लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि हमने देखा कि आभा मंडल क्या है, हमारे विचारों के प्रकंपन है, हमारे थॉट्स है। वो हमारे थॉट्स का कोई एक्सरे ले तो वो ऑरा है ना। तो वो चेंज कैसे होगा? जब यहाँ पर सब कुछ चेंज होगा तब वो चेंज होगा, नहीं तो सिर्फ मिर्ची घुमाने से और नमक घुमाने से ठीक होता तो बाबा हमको रोज बोलता सूक्ष्म वतन में आओ, मैं तुम लोगों को मिर्ची और नमक घुमा देता हूँ एंड सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही होता ब्रह्मा कुमारी में, अगर ये बिलीव होता कि इस तरह से आभा मंडल ठीक हो, तो बाबा तो हमारे को ऐसे कभी नहीं बोला और कोई मुरली में ये पॉइंट नहीं आया। तो जैसे वो लोग कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि स्नान करने से होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते? ज्ञान स्नान करते। हम ज्ञान की एक एक पॉइंट्स पर लेकर उस पर चिंतन करते, मनन करते, तो वो एनर्जी जनरेट होती है। और जैसे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे ना कि पानी को कैसे चार्ज करके, जैसे हमारी 70% बॉडी में वाटर है ना, तो जब पानी को हम दृष्टि देते और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव विचार डालते, एक एक विचार पॉजिटिव विचार जब पानी में डालते और उस पानी को पीते हैं, तो हमारी हर सेल को वो पानी जाता है, तो हमारी हर सेल इतनी पॉजिटिव एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। तो जब पूरा इतना पानी वाइब्रेट करता है पॉजिटिव एनर्जी से, तो ऑब्वियसली हमारा ऑरा उससे ठीक होता है। तो एक है पानी से शुद्धिकरण, और सेकेंड हमने कहा ज्ञान से। तो ज्ञान स्नान, तो ज्ञान स्नान बाबा ने क्या कहा है, कितनी बार करो? अनगिनत बार करो। बाबा ने कभी कभार मुरली में कहा है ना कि वो जो बड़े लोग होते हैं वो तो दिन में 2 बार स्नान करते, तो तुमको भी उतनी बार तो ज्ञान स्नान करना चाहिए, है ना। तो रोज की हमारी जो मुरली है उसका अध्ययन मनन चिंतन करने से इस आभा मंडल को हम प्योर बनाते हैं। तो पहला हुआ ज्ञान स्नान, सेकेंड उन्होंने कहा वायु शुद्धि। वायु से अभी हम कैसे इसको रिलेट करेंगे पॉइंट को? श्वास श्वास बाबा की याद। देखो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते हमारा भी वायु से शुद्धिकरण हो सकता है, परंतु कैसे? अगर हम यहाँ से किसी के साथ निकले नक्की राउंड पर, गॉसिप करते हुए निकले, नक्की पर देखते हुए निकले कि बहुत अच्छे फूल हैं यहाँ पर, अच्छा झरना आ गया, बारिश हो गई इधर, तो अच्छा नक्की का वाटर लेवल बहुत बढ़ गया है ना, ये सारी बातें करते हुए अगर बाहर निकले तो वायु से शुद्धिकरण नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छे गमले लग रहे हैं, हमारे वाले ही लगा रहे हैं, तो है ना, ये सारी बातें करते हुए अगर हम निकलेंगे तो वायु से शुद्धिकरण नहीं होगा। लेकिन वायु से शुद्धिकरण कब होगा? जब हम निकलेंगे कोई एक ज्ञान की पॉइंट लेके। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि तुम भारत की तकदीर बनाते हो, कितना अच्छा पॉइंट है, और बाबा ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको कैसे। अब इस एक पॉइंट को लेके निकले और 3 किलोमीटर नक्की को चले तो कितनी सारी पॉइंट्स आएंगी। बाबा ने कहा तुमको दूसरों को हंसाना है, हाँ बाबा ने कहा तुमको दूसरों को हंसाना है, तुमको रूठना नहीं है। इस एक पॉइंट को लेके पूरी नक्की पे राउंड लगाए कि बाबा ने क्यों कहा हंसना है, दूसरों को हंसाना है, खुश रहना है, क्यों रूठना नहीं है, अच्छा कैसे नहीं रूठना है, कब कब हम रूठते हैं, कितनी सारी पॉइंट है। अच्छा दूसरों को हंसाना है, बाबा ने बोला कैसे दूसरों को हंसाना है, क्या करें हम तो दूसरों को हंसाए, कितनी सारी पॉइंट है ना। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए निकलेंगे तो ये है वायु से शुद्धिकरण। अगर वायु में जाके बैठ के बाबा की याद करे, बाबा से शक्ति ले, तो वो है वायु से शुद्धिकरण। वरना सिर्फ वायु में गए और फ्रेश एयर ले और सोचे कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है, तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई चिंतन करते हुए या अगर हम किसी की क्लास सुन रहे हैं, किसी की क्लास सुनते हुए पूरा राउंड लगाए, तो शुद्धिकरण होगा। तो ये हुआ वायु से शुद्धिकरण। अब उन्होंने कहा तीसरा अग्नि से, तो कैसे करेंगे? ज्वालामुखी योग। हमको कहीं आग नहीं लगानी बैठ के, लेकिन बाबा ने कहा योग अग्नि, है ना? कैसे कनेक्ट हो रहे पॉइंट देखो, योग अग्नि बाबा ने कहा, ज्वालामुखी योग चाहिए। बाबा को साधारण योग नहीं चाहिए, बस बैठ गया के बाबा का चित्र देखा, बाबा से थोड़ी रू रिहान कर ली, थोड़ी बात कर ली, और जैसे कि संडे की मुरली में क्या था, मांगने वाले भिखारी नहीं बनो। अगर हम भिखारी बन के बैठे तो हमारा कोई शुद्धिकरण नहीं होता। अगर हम बैठे मांगते बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, आज ये करना बाबा, अगर ये कर रहे, अगर भिखारी बन के बैठ रहे, तो हमारा पूरा ऑरा नेगेटिव ही होते जा रहा है और काला ही होते जा रहा है। लेकिन अब अधिकारी बन के बैठे, बाबा से वो शक्ति ले, और जैसे बाबा कहता है कि ज्वालामुखी योग चाहिए बाबा को, बाबा को ऐसे साधारण योग नहीं चाहिए, एकदम पावरफुल योग चाहिए, तब उसको कहेंगे अग्नि से शुद्धिकरण, है ना? तो जैसे हम अमृत वेला आते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आना है कि कैसे हम अमृत वेला करेंगे, ऐसे ही आके बैठ नहीं जाना है कभी भी। एक घंटा बैठते हैं ना तो बुद्धि बहुत यहाँ वहाँ जाती है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना, वो एक घंटे को हम क्या स्वमान के अभ्यास करें, हम कितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, कुछ प्लानिंग करके बैठना। नहीं तो क्या होता है, बस चल के आते हैं या तो डाइनिंग से चाय वाय पी के आते हैं और बैठते, तो कोई ज्वालामुखी योग और कोई अग्नि शुद्धिकरण नहीं होगा। तो इस पे ध्यान देना कि अग्नि से शुद्धिकरण कैसे, तो ज्वालामुखी योग से। फिर कहा और कैसे हो सकता है शुद्धिकरण, जैसे कि शुद्ध संकल्पों से। तो शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलेंगे हमको? मुरली से, है ना? तो शुद्ध संकल्प, तो जैसे कि ओम शांति भवन को ले लो। अब ओम शांति भवन में जब हम जाते हैं तो वो वायुमंडल कितना पावरफुल है। वहां पे बाबा आते थे ना, बाबा की पदरामिनी होती थी, तो कहते हैं ना मुरली से 10 मिनट पहले ही जाके बैठना है, ताकि वो वायुमंडल में सब लोग योग कर रहे होते हैं। तो हम भी जाएंगे हमारे ऑरा के साथ और बैठेंगे वहां पे, तो वो कितना क्लीन होता है, कितना शुद्धिकरण होता है वहां पर। और ज्ञान की एक एक पॉइंट जब हम सुनते हैं और वो हमारी बुद्धि में जाती है तो कितना मजा आता है, है ना? ज्ञान के एक एक पॉइंट इतने नशे वाले है। बाबा ने कहा ना उस दिन कि बाप तुमको मांगने से पहले देता है, बाबा को पता है बच्चों को क्या चाहिए, तो कितना प्यार करता है बाबा हमसे। बाबा कुछ ऐसी भी पॉइंट बोल देता है कि बंदर लायक थे तुमको मंदिर लायक बना रहा हूं, तो भी अच्छा लगता है। बाबा कितना प्यार से बोलता है कि मैं तुमको लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे शरीरों को जला कर लेके जाऊंगा, तो भी मजा आता है, क्योंकि इतने प्यार वाले पॉइंट्स होते हैं वो टाइम पर। और वो इतने प्यार से अगर हम सुनते हैं तो हमारा जो ऑरा है उसका शुद्धिकरण होता है। तो जो स्थान है ओम शांति भवन, अभी जैसे कहा मधुबन, मधुबन भी क्या है, ऑरा क्लेंजर मशीन है एक्चुअली। जब आप लोग यहाँ पे आए होंगे, है ना, बाहर से जब यहाँ आते हम तो थोड़े इतने ट्रैवल करके सिटी से आते हैं, इंडिया के कौन से कोने से आते हैं, लेकिन जैसे ही हम मधुबन के गेट के अंदर घुसते हैं तो क्या होता है, कितनी खुशी, जैसे कि सारी थकान उतर गई, जैसे कि सारी नेगेटिव एनर्जी चली गई, है ना? मधुबन में जब चलते हैं ना तो सोचते रहना कि हमारे आभा मंडल की कितनी शुद्धिकरण हो रही है। मधुबन का एक एक स्थान जहाँ हम बैठे हैं अभी इस वक्त, अब ये हिस्ट्री हॉल है, है ना? हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा मुरली चलाती थी, यहाँ पे दादियां बैठ के अमृत वेला करती थी, योग करती थी, इतना पावरफुल वातावरण है ये, है ना? तो ये वातावरण, जैसे ही हम शांति स्तंभ पे जाते हैं तो शांति स्तंभ पे भी कितने पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं, तो उस वाइब्रेशन से भी हमारे ऑरा का जैसे कि शुद्धिकरण होता है। ऐसे ही मधुबन के किसी भी आंगन में हम जाएं, किसी भी स्थान पर, किसी भी कोने पर जाएं, तो शुद्धिकरण होता है। अगला पॉइंट है स्वमान, स्वमान का अभ्यास। स्वमान के अभ्यास से हमारा बहुत शुद्धिकरण होता है। कैसे, कौन से ऐसे स्वमान है नशे वाले जिसको याद करके ही बहुत बहुत खुशी होती है? मैं शिव शक्ति हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, और अच्छे बोलो, मैं मास्टर भगवान हूँ। मैं मास्टर भगवान हूँ, सोच के देखो कैसा लगता है। उस दिन किसी भाई ने बोला कि मैं भगवान की पहचान हूँ, मैं बोला अरे वाह, मैं राज ऋषि हूँ, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, पद्मा पदन भाग्यवान हूँ। कितनी नशे की पॉइंट है ना। हाँ, मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। कितना अच्छा पॉइंट है। याद करें जब हम कहाँ थे, जिस सिटी में थे, जिस बिल्डिंग में थे, या जिस कॉलेज में थे, या जिस स्कूल में थे, उसमें से हम वही एक है निकले जो आए ब्रह्मा कुमारीज में, जिसको भगवान ने चुना। कितनी नशे वाली पॉइंट है। तो इतनी नशे की पॉइंट अगर बुद्धि में रखेंगे तो वही प्रकम्पन फैलते फिर, और फिर हमारा इतनी हमको खुशी होती है कि अरे वाह। तो ये है ऑरा का शुद्धिकरण। तो स्वमान का अभ्यास बार बार करना, जैसे कहते हैं ना कि एक स्वमान सुबह में ले लो और उसको दिन भर उसके ऊपर अभ्यास करो, हर घंटे उसका अभ्यास करो, ताकि हर घंटे कुछ कुछ अच्छा हो, है ना। कई बार ऐसे होता है, हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते, बहुत सारे लोग आते, अच्छा अब दूसरों का ऑरा हमारे ऑरा से भी टकराता है ना। कभी कभार ऐसा होता है किसी को मिलके हमको अच्छा नहीं लगता और किसी को मिलके हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना प्योर होता है। जब हम दादियों से मिलते हैं तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, दादियों से मिलके खुशी होती है क्योंकि उनका ऑरा बहुत प्योर है। हर आत्मा से मिलके हमको इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कुछ नेगेटिविटी होती है। तो एक होता है अच्छा ऑरा, एक होता है ब्लैक ऑरा। तो कैसे उनको मिलके हमको अच्छा लगता है, तो इसी तरह से स्वमान का जितना अभ्यास करेंगे हम बार बार, तो उतना उस ऑरा की क्लेंजिंग होती है, इतना उसका शुद्धिकरण होता है। तो एक हुआ स्वमान, और स्वमान हो गया, और इसके अलावा जैसे मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार हूँ। इस स्वमान को हमने कुछ दिन पहले पढ़ा, कितना अच्छा लगता है, मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार हूँ, सुन के कितना अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर अभ्यास करना, सिर्फ इसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार हूँ, है ना। जैसे वो मूर्ति होती है, उसको बिंदिया पहनाते हैं, उसको हार पहनाते हैं, उसको कुछ कान में डालते हैं, उसको ताज पहनाते हैं, तो बाबा को देखते हुए कि मैं उसमें सब में हूँ, उसमें हार में हूँ, उसकी बिंदी में हूँ, उसके गले में हूँ, तो मैं भगवान का श्रृंगार हूँ, तो कितना नशा चढ़ेगा। तो ये है भगवान, मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार हूँ। और किस चीज से होगा? हाँ, स्वमान हो गया। इसके अलावा दुआएं देने और दुआएं लेने से। अगली पॉइंट अगर हम सोचे तो हमारे पास हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना। अभी हर घंटे हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग हमारे वाइब्रेशंस में आते हैं, बहुत लोगों की एक्सचेंज होती है एनर्जी उसमें, तो ऑरा खराब होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल बचता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल बजे एक मिनट का और हम तुरंत अपने आप को अशरीरी बनाएं और उस ऑरा का शुद्धिकरण करें, उसकी क्लीनिंग करें, उस आभा मंडल को प्योर बनाएं। तो हर घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी एक ऑरा क्लेंजिंग है, हर घंटे उस पर ध्यान देना। इसी तरह से बीच बीच में अभ्यास करना, पांच स्वरूप का अभ्यास। अब पांच स्वरूप का अभ्यास कैसे ऑरा को क्लीन करता है? अगर हम देखें तो ये पांच स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, संगम योगी ब्राह्मण, फरिश्ता और ज्योति बिंदु, अनादि स्वरूप, ये सब स्वरूप में एक चीज कॉमन है, क्या? प्योरिटी। जब सत्युग में है, मैं देवता, मैं प्योर आत्मा हूँ, है ना, संपूर्ण निर्विकारी। जब हम पूज्य स्वरूप में है तो हम पवित्र है। जब हम ब्राह्मण है तो हम पवित्र, पवित्रता की धारणा को अपनाते हैं। जब हम फरिश्ते हैं तो हम लोग कंप्लीटली प्योर है, और ऐसे ही हमारा अनादि स्वरूप, तो हम कंप्लीटली प्योर है। तो कितनी प्योरिटी जनरेट होती है इस स्वमान, इस पांच स्वरूप के अभ्यास से, तो ऑरा में कितनी प्योरिटी आएगी, है ना। तो पांच स्वरूप का अभ्यास बार बार करना, कहते कम से कम पांच बार, आठ बार, दस बार तो रोज करना, है ना। तो पांच स्वरूप का अभ्यास, तो इससे शुद्धिकरण होता है। और हाँ बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास करो। तो जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो इस जैसे कि ऑरा की क्लीनिंग होती है, तो वो सब योग में आए ना पॉइंट्स। अब डायमंड हॉल में पहुंचो। डायमंड हॉल में पहुंचते जब बाबा मिलन होता है ना, लास्ट सीजन में बाबा कितनी बार नहीं आए लेकिन फिर भी हम सब गए ना डायमंड हॉल में। और डायमंड हॉल में जाने के बाद कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? वो क्लीन होता है हमारा ऑरा और हम इतने शुद्ध होते हैं। वो इतना पावरफुल पावरफुल एनवायरनमेंट है जिधर भगवान की पदरामणि होती है ना। डायमंड हॉल इतना चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, इतना चार्ज्ड एनवायरनमेंट है। तो जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं हम, तब हमारे इस आभा मंडल का शुद्धिकरण होता है। जब बाबा मिलन होता है, जब बाबा की दृष्टि मिलती है हमको, है ना, उस सीन को सामने लाते हुए कि बाबा की जब दृष्टि मिलती है तब हमको वो एनर्जी मिलती है और तब हमारी एनर्जी हमारे प्रकंपन में आती है। देखो कैसे शुद्धिकरण होता है। इसी तरह से हम जब दूसरी ब्राह्मण आत्माओं से मिलते हैं और दृष्टि, है ना, एक दूसरे को दृष्टि देते, तो दृष्टि देते टाइम क्या करते हम? अपने आप को आत्मिक रूप में स्थित करते, बाबा को याद करते और सामने वाली आत्मा को दृष्टि देते। तो जब दृष्टि भी देते तो पॉजिटिव एनर्जी जाती है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी जब जाती है तो भी ऑरा का शुद्धिकरण होता है। इसी तरह से बहुत पॉजिटिव विचार रखना, बहुत पॉजिटिविटी। जिधर पॉजिटिविटी होती है उधर ऑरा बहुत अच्छा और ऑरा बहुत वाइट होता है। ये ऑरा के अलग अलग कलर्स के बारे में बात करते हैं कि कोई डार्क कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, वाइट कलर। हम इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे बट उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो जितना लाइट कलर उतना अच्छा। तो जितनी पॉजिटिविटी होती है उतना ये ऑरा बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड जीत रही है ना। क्यों इंग्लैंड जीत रही है? उनके होम टाउन में हो रहा है, सारी संख्या उनके जीतने पर करती है। कहते हैं जब इंडिया कोलकाता के स्टेडियम में खेलती है तो इंडिया हमेशा जीतती है। क्यों? क्योंकि 80,000 90,000 लोग इतने पॉजिटिव संकल्प और हमारे क्रिकेटर्स जो है उनके ऑरा भी इतने पॉजिटिव होते कि वो जीतते हैं। तो पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑरा को इतना शुद्ध करती है, है ना। तो इतना पॉजिटिविटी जनरेट करना कि इतना अच्छा लगे, कोई हमको मिले तो बोले अरे वाह आज इनसे मिले। कहते ना किसी की शक्ल देखते सुबह में किसकी शक्ल देख ली आज, कह रहे आज दिन अच्छा नहीं जाएगा। वो शक्ल पे नहीं होता एक्चुअली, वो होता है ऑरा पे, वो वाइब्रेशंस और एनर्जी पे। किसी की शक्ल देखने से हमारा दिन खराब नहीं होता, तो वो ऑरा और वाइब्रेशंस और एनर्जी की बात है। तो अब बताइए कि ऑरा खराब कैसे होता है? ये सब चीजें तो हम अच्छी करने के लिए करेंगे। अब इसको बाह्य मुक्ता, तो बहुत ज्यादा बाह्य मुक्ता में रहेंगे, बहुत ज्यादा व्यर्थ चिंतन में रहेंगे तो ऑरा ब्लैक होते जाएगा। और दूसरों की बदवाए, जैसे कहा आपने ना दुआएं कमाना, जब दुआएं कमाएंगे तो अच्छे प्रकंपन फैलेंगे। वैसे अगर किसी की बदवा ले ली हमने तो वो नेगेटिव इमोशंस को ब्लॉक करेगा। कहते हैं ये एनर्जी ब्लॉक होने के लिए दो चीज है, एक है मेमोरी और एक है इमोशंस। कोई ना कोई पास्ट घटना को हम याद करते ना तो वो मेमोरी है हमारे बुद्धि में, उसकी मेमोरी है कि ये है और उसको हम पकड़ के रखे और उसके साथ फीलिंग्स हैं। इस चीज को जब लेट गो करेंगे तब वो एनर्जी खुलती है ऑरा की और वो प्योर होता है। तो उसी तरह से किसी की बदवा ना लेना लेकिन दुआएं कमाना। और जैसे आज बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, तो दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, तो किसी को दुख ना देना। और श्रीमत का उल्लंघन करना, उस दिन यहाँ पर मर्यादाओं की लिस्ट निकाली थी, तो जब हम मर्यादाओं पे चलते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो बहुत प्योर रहता है। तो कौन सी मर्यादाएं हैं? सबसे पहले तो अमृत वेला, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना और मुरली क्लास सुनना, मुरली पढ़ना, बाबा की याद में भोजन। भोजन भोजन देखो कितना इम्पोर्टेंट है ऑरा क्लिनजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही भोजन आता है हमारे सामने, है ना, अगर ऐसे ही खा लिया तो थोड़ी ना कुछ लगता है वो, लेकिन वो ब्रह्मा भोजन उसको हम दृष्टि देते हैं। अच्छा वो ब्राह्मणों को देखा होगा ना, वो लोग ब्राह्मणों के आगे जब प्लेट आती है तो वो लोग क्या करते? पानी छिड़कते। अब ये पानी छिड़कने से मंत्र पढ़ते, पानी छिड़कते और फिर प्रभु की याद में खाते, है ना, वो कैसे करते? और हम यहाँ पे क्या करते, बाबा को याद करते, दृष्टि देते, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालते उसमें, बाबा को खिलाते और फिर खाते। जब ऐसा खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा खाएंगे तो वैसे बनेंगे, तो वैसे प्रकंपन फैलेंगे। तो भोजन से शुद्धिकरण, और पानी तो कहा ना हमने, हाँ, जैसा पानी वैसा वाणी। और तो कैसे ये ब्लॉक होंगी एनर्जी? तो ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में रखना। और कौन सी मर्यादा है? बाबा ने कहा बाइस्कोप में नहीं जाना। हम सोच रहे थे, देखो बाबा हमारे ऑरा कैसे कैसे खराब होते हैं। बाबा हमको कभी नहीं कहता कि मंदिर में नहीं जाओ। बाबा कहता है मंदिर में जाके सेवा करो और शमशान घाट पे जाके सेवा करो, यहाँ तक के वैश्यों पर भी जाके सेवा करो वहां पर, लेकिन बाइस्कोप में जाके सेवा नहीं करो। क्यों? देख वहां पर भी तो लोग मिलेंगे, उनको सुना सकते ज्ञान, है ना, लेकिन भगवान को पता है कि वहां के वाइब्रेशन कैसे, और मेरे बच्चों का ऑरा खराब हो जाएगा। हाँ, तो भगवान को भी पता है बच्चों को कहाँ भेजना है। बाइस्कोप में नहीं भेजता हम लोगों को, थिएटर्स में नहीं भेजता, हमको नहीं कहता कभी मुरली में कि मॉल्स में जाके सेवा करो, ऐसे कुछ कहा क्या? उसको पता है कौन से बाबा ने कभी नहीं कहा अभी तक व्हाट्सएप पे सेवा करो, है ना, है? पहले अगर मुरली चलती तो शायद बाबा बोल देता व्हाट्सएप भी नहीं यूज करना है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, वही तो बोल रहे कि उस टाइम नहीं था, नहीं तो बाबा, तो जैसे, तो कैसे कैसे हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है, तो ये सारी चीजों से। और क्रोध, अगर बहुत ज्यादा क्रोध है किसी में तो एनर्जी ब्लॉक होती है। बाबा ने एक साकार मुरली में कहा था, अगर आप किसी पर क्रोध करते हो तो 6 महीना वो आत्मा आपके पास नहीं आएंगी, भले वो आपसे बात करेगी लेकिन दिल से नहीं जुड़ेगी। वो साकार मुरली में आया ये, 6 महीना वो आत्मा आपसे दूर हो जाएगी अगर किसी से क्रोध करते हैं। तो क्रोध से तो कितना फैलता है। ऐसे ही वो मशीन आती है ना जिससे यहाँ पे ऑरा चेक करते हैं, तो एक बार एक वर्कशॉप हो रहा था, उसमें किसी को खड़ा किया और बोला कि है ना आप, अब उसका ऑरा चेक किया, फिर उसको कहा कि है ना अभी आप लास्ट 1 मंथ में जब भी आपको गुस्सा आया वो उस गुस्से को याद करो 1 मिनट के लिए, और जब उसने 1 मिनट के लिए उस गुस्से को याद किया तो उसका ऑरा एकदम कम हो गया। तो वो 1 महीने पहले की बात 1 मिनट के लिए याद किया तो ऑरा कम हो गया। तो जब हम एक्चुअली गुस्सा करते हैं तो क्या होता है सोचो, है ना, जब गुस्सा करते तो हाथ कांपते हैं। जब हम ज्ञान में आए थे, बहुत नए थे, बहुत गुस्सा करते थे, स्टाफ ने अगर कुछ कर दिया तो बहुत गुस्सा करते करते हम खुद ही रोते थे, तो कितनी एनर्जी ड्रेन होती। और फिर रियलाइज होता था जब तक शाम को मधुमन नहीं आएंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक रिकवरी नहीं होती थी, तो कितना टाइम लगता है। तो गुस्सा कितना खराब है सोचो, तो गुस्से से ये एनर्जी ब्लॉक होती है। और पर चिंतन, पर दर्शन, गॉसिप्स करना, है ना, ये सारी चीजें गंदी है, सारी चीजें डर्टी, सारी चीजें ऑरा को गंदी कर रही है। किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में बोलना उल्टा सीधा, इसने वो किया, उसने ये किया, उसको 10 लोग को जाके सुनाना, उनके भी ऑरा को खराब करना अपने साथ, है ना, तो जैसे कि सर्वव्यापी बनाते उस गॉसिप को, तो उसी तरह से ये गॉसिप्स, पर चिंतन, पर दर्शन, ये हमारे ऑरा को खराब करते हैं। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये खराब होगा और किसी जगह पे बैठेगा, उस जगह पे एनर्जी डिपॉजिट और फिर बीमारी आना चालू। तो इसलिए उसको शुद्ध रखने के लिए यहां से शुद्धि चाहिए। इसी आज ही मुरली में कहा ना बाबा ने, किसी से रूठना नहीं है। हाँ, जब रूठ जाते तो क्या करते, रूठ जाते तो घंटों तक सोचते उसके बारे में। एक चीज हो गई, उसको रूम तक लेके जाते, उसके बारे में सोचते और बार बार उसी को रिपीट करते, फिर अच्छा नहीं लगा तो मैसेज करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगा तो जाके दूसरों को सुनाते हैं कि इसने ऐसे किया, और उससे बात नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे। तो बाबा ने कहा रूठना नहीं है, रूठने वाले खगिया नहीं मार सकते। बाबा ने खुश रहने को कहा, खुश रहने से प्रकंपन अच्छे फैलते, तो रूठना नहीं है, अपसेट नहीं होना है किसी से। हमारी एनर्जी खराब होती है, हमारा ही नुकसान है एक्चुअली, है ना, बाबा के देखो आज की मुरली के कितने पॉइंट्स है जो ऑरा को क्लीन कर रहे, है ना, खुशियों में खग्गिया मानने वाले नशे के पॉइंट्स है, दूसरों को पत्थर मारोगे तो पत्थर बूंदी बन जाओगे। बाबा ने कहा जेलसी, दूसरी है ईर्ष्या, किसी से अगर ईर्ष्या करते हम तो खुद भी जलते और सामने वाले को तो उतनी बैड एनर्जी जाती हमसे, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या से भी ये खराब होता है। जैसी ईर्ष्या आती है उसके साथ कंपटीशन की भावना आती है, दूसरों से हम कंपैरिजन करते हैं, उसकी बुराई जाके दूसरों को सुनाते हैं। कहते हैं ईर्ष्या एक ऐसा चक्र है जैसे कि अगर हम आगे बढ़े, दुनिया में कोई ना कोई हमसे आगे ऑलरेडी है, ऐसा ये विशेष सर्कल है, कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत है, कोई हमसे ज्यादा ज्ञान योग कर रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही टॉप पे रहूं, है ना। तो ऐसा चक्र है, आप आगे जाओ आप देखोगे ऑलरेडी कोई आगे, आप आगे जाओ देखोगे ऑलरेडी कोई आगे, तो ऐसा चक्र है ये ईर्ष्या। तो इस ईर्ष्या से दूर, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है, इससे बहुत सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि कैसे ये नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करती है हमारे इस ऑरा को। तो ये है ऑरा क्लेंजिंग, तो इससे हमको इन चीजों से दूर रहना है। और कौन सी चीजें करनी है बोलते जाओ, पहले ज्ञान स्नान, स्नान से शुद्धि मतलब ज्ञान स्नान, जब भी पानी पियेंगे दृष्टि देके पियेंगे पानी को। सेकंड भोजन, जैसा अन्न वैसा मन, तो भोजन मौन में, भोजन दृष्टि देकर फिर खाना है। और वायु शुद्धिकरण, जब भी वॉकिंग पे जाएंगे, आप सब यहाँ पर सेवा में आए तो यहाँ से वॉकिंग पे बहुत लोग जाते हैं, तो ग्रुप्स में तो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जाओ तो ज्ञान चिंतन करते हुए, कोई एक पॉइंट लेकर उस पे चिंतन करते हुए। अभी ये पॉइंट है ना ऑरा क्लेंजिंग, इसको लेके जाना और इस पे और पॉइंट्स आएंगे। तो ज्ञान चिंतन, वायु शुद्धिकरण, फिर अग्नि, अग्नि शुद्धिकरण माना ज्वालामुखी योग, बाबा को साधारण योग नहीं चाहिए। और पॉजिटिविटी, है ना, क्रिकेट स्टेडियम को याद करना, पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी कि उससे और अच्छा होगा। और स्वमान, स्वमान का अभ्यास, बार बार स्वमान का अभ्यास, अच्छे नशे वाले पॉइंट्स। और हर पॉइंट, हर घंटे की जो ड्रिल होती है यहाँ पर, है ना, जो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है उस पे ध्यान देना। कल जब हम अपने सेवा में जाएंगे ना, तो ऐसे देखना हम सबके ऑरा है, मेरा ऑरा कैसा है, उसका ऑरा कैसा है, और ट्रैफिक कंट्रोल करना और समझना कि कैसे ये वाइट होते जा रहा है, कैसे ये चार्ज होते जा रहा है। और मधुबन, मधुबन का इम्पोर्टेंस हमारे बुद्धि में हो कि हम किस स्थान पर है, हम हर जगह पे जाते हैं तो सोचते जाना कि कैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। मधुबन का हर कोना, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा का रूम, बाबा की कुटिया, हर जगह पे जब जाते हैं ना तो सोचना कि बाबा ने क्या किया था यहाँ पे, मम्मा ने क्या किया था। बाबा की कुटिया में जाते हैं, वो चित्र है ना, बाबा लेटर लिख रहा है, चित्र को देखने से ही कितनी सारी फीलिंग्स आती है ना, तो वो याद करना। बाबा का रूम, पहले तो छोटा रूम था, पहले बाबा उधर ही मिलते थे बच्चों से, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये ऑरा को शुद्धिकरण करेगी, तो इन सब चीजों पर काम करना। काम एक्चुअली ऑरा पर नहीं करना है कि ये वाइट हो और ये कलर यहाँ से जाए, काम सब यहाँ करना है। देखा जाए तो बाबा ने कभी ऑरा वर्ड कोई भी मुरली में यूज नहीं किया। बाबा कहता है आभा मंडल, बाबा कहता है चमकता हुआ पवित्रता का ताज, बाबा कहता है चमकीला शरीर, है ना, बाबा ये वर्ड नहीं यूज करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो इसी चीज का शुद्धिकरण कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे बीमारियों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, कि बाबा से एनर्जी लेते हैं और फिर उस एनर्जी से बीमारी कैसे जाती है हमारी, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये है ऑरा क्लेंजिंग। अब जस्ट 5 मिनट के लिए हम एक योग कमेंट्री करेंगे। वो लोग ऑरा क्लेंजिंग में कैसे ऑटो सजेशंस देते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो इसी तरह से हम कुछ योग कमेंट्री करेंगे जिससे हम अपने आप की ऑरा को क्लीन करेंगे। सारा हमारा ध्यान आत्मा पर रहेगा। मैं आत्मा भृगुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं। अपने आप को लाइट के कार में देखिए। मैं चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। और मेरे खुशी के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं, जिससे एक बहुत सुंदर आभा मंडल मेरे आसपास बन रहा है। बहुत शुद्ध सफेद चमकता हुआ आभा मंडल मेरे आसपास है। अब हम अपनी पूरी दिनचर्या को देखेंगे इस आभा मंडल के साथ। मैं आत्मा बाबा की याद में अमृत वेले बैठी हूँ। जैसे जैसे मैं शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ, यह आभा मंडल शक्तिशाली बनते जा रहा है। और दूर दूर तक इसके प्रकंपन फैल रहे हैं। हॉल में बैठी हुई सभी आत्माओं को मिल रहे हैं। अमृत वेला पूरा चार्ज होते हुए बड़े से आभा मंडल को देखे। जहां जहां मैं आंगन में चल रही हूँ, वहां वहां ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब अपने आप को मुरली क्लास में देखे। बाबा के महावाक्य सुनकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरा ज्ञान स्नान हो रहा है। इस ज्ञान स्नान से मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। खुशी खुशी निकलते हुए अब मुरली क्लास से मैं डाइनिंग हॉल में पहुंची। मेरे सामने ब्रह्मा भोजन है। ब्रेकफास्ट की प्लेट मेरे सामने है। मैं बाबा की याद में ये शुद्ध भोजन स्वीकार कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं ये शुद्ध भोजन स्वीकार कर रही हूँ, बाबा की याद में मेरे शरीर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। फील करें कि शरीर की एक एक सेल बहुत हेल्दी होती जा रही है। मैं आत्मा हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा स्वस्थ हूँ। अब चले अपने कर्म क्षेत्र पर, जिस जिस डिपार्टमेंट में हम सेवा करते हैं हम वहां हैं। सेवा करते हुए हमारी बुद्धि बाबा के पास है, बाबा की याद में रहते हुए मैं हर कर्म कर रही हूँ। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है और यह आभा मंडल उतना ही शुद्ध बनता जा रहा है। किसी की भी नेगेटिव एनर्जी मुझे टच नहीं कर सकती। मैं बहुत शुद्ध और पावन हूँ। अब अपने आप को फिर से इस हॉल में लेके आए। मैं आत्मा लाइट के कार में हूँ। और मेरे शुद्ध आभा मंडल से सारा हॉल पवित्र होते जा रहा है। ओम शांति।